नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे महान कलाकार से जिसने भारतीय फिल्मों में गायन को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया जहां पहुंचना आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मुमकिन नहीं, जिसके अंदाज की नकल उसके जीवन काल से ही गायक करने लगे थे, आज भी करते हैं और दशकों तक करते रहेंगे। ना उसने हजारों गाने गाए, ना सैकड़ों फिल्में की, फिर भी आने वाले न जाने कितने साल तक वो हिंदुस्तान में गायकों का सिरमौर रहेगा। जी, मैं बात कर रहा हूं सुर सम्राट कुंदन लाल सहगल की।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया।
नई सदी अंगड़ाई ले रही थी। जम्मू कश्मीर में केसर की क्यारियों के बीच कुंदन ने दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखा। 100-125 साल पहले के हिंदुस्तान में किसी तहसीलदार के घर जन्म लेने का मतलब किसी छोटे मोटे राजा के घर जन्म लेना ही था। पंजाब के जलंधर से जम्मू आकर बसा सहगल परिवार रियासत का एक भरोसेमंद परिवार था। कुंदन को देखते ही जाने माने सूफी पीर सलमान यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ये बच्चा एक दिन बड़ा गायक बनेगा। कुंदन की माँ केसर खुद भी अच्छा गाती थी। वो इस भविष्यवाणी से खुश तो थीं, लेकिन तहसीलदार पिता के लिए ये कोई अच्छी सूचना नहीं थी। फिर भी माँ बेटे के गीत संगीत में उन्होंने कोई अड़चन नहीं डाली। हाँ, पढ़ने लिखने में कुंदन का मन नहीं लगता था, और लगता भी कैसे। नियति तो कश्मीर के कुंदन को कहीं और ले जाना चाहती थी।
हा हा हा, मन दर्पण है जग सारा।
जी जी, याद है ना, मैंने कहा था कि आसमान पर बादल हमेशा छाए नहीं रहेंगे।
कश्मीर के इस कुंदन की पूरी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की कहानी हमें सुनाएंगे वो लोग जो दशकों से इस सुर सम्राट को अपने भीतर धड़कता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये हैं शरद दत्त, जिन्होंने बरसों तक कुंदन लाल सहगल के बारे में घूम घूम कर शोध किया और उन पर किताबें लिखी। उन्होंने एक वृत्तचित्र का भी निर्माण किया। चौरानवे साल के प्राण नेविले, जिन्होंने लाहौर में कुंदन लाल सहगल को एक महफिल में गाते देखा और सुना। प्राण नेविले ने उन पर अनेक किताबें लिखी। डॉक्टर हरीश भल्ला, जो चार दशकों से देश के सांस्कृतिक राजदूत बने हुए हैं और सहगल की गायकी ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली, राहुल ने अनेक साल तक जम्मू में रहकर सुर सम्राट के बारे में शोध किया। खुद केएल सहगल के नाती परमिंदर चोपड़ा, 90 साल की उम्र में सहगल के गीतों को डूब कर गाने वाले कोसी नायनन।
एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा।
शरद दत्त से प्राप्त कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग, जिनमें सहगल की बेटी बीना चोपड़ा, संगीतकार नौशाद, सहगल के साथी रहे राजा राम शर्मा, के एन सिंह, गीतकार केदार शर्मा और अनेक जानकार। और हाँ, लता मंगेशकर को भला कैसे भूल सकते हैं, जो अपने बचपन से कुंदन लाल सहगल की दीवानी थी।
सो जा मैं बलहारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान जाइए।
डोगरी लोकगीतों की धुनों ने 5 साल के कुंदन को मोहित कर दिया था। एक एक शब्द और लोकगीतों की धुनें गहरी नींद में उसके जेहन में गूंजती रहती। न पढ़ने में दिल लगता और न किसी काम में। हाँ, कुंदन की माँ भी बड़ा मीठा गाती थी। कुंदन उन्हें गाते हुए घंटों तक सुनता रहता। अलबत्ता पिताजी को यह भांडगिरी लगती थी, लेकिन वो मन महसूस कर रह जाते क्योंकि उनकी पत्नी का ये प्रिय शौक था।
के लिए कहा जाता था भी स्कूल जाओ, जैसे सब माँ बाप बच्चों को कहते हैं, प्लीज टू रन अवे फ्रॉम द हाउस। एंड पता नहीं कहाँ जाते थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर लौट आते थे घर। हमारी दादी के साथ वो गाया करते। दादी वॉज अ वेरी गुड सिंगर अगेन, लेकिन उन दिनों में हमारे दादाजी गाने के बहुत खिलाफ थे। तो जैसे ही दादाजी काम पर जाते थे तो मम्मी और मेरी दादी और डैडी दोनों गाया करते थे खूब। रादर शी वॉज द वन हु एक्चुअली इनकरेज्ड माय फादर फॉर सिंगिंग।
हद तो ये थी, स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते तो पल्ले ना पड़ता। मास्टर जी गणित समझाते और कुंदन के जेहन में चरवाहों की बांसुरी और उनके लोकगीत चलते रहते। चरवाहों के गीत सुनने के लिए वो अक्सर स्कूल से गायब हो जाता। रात को पोल खुलती तो पिताजी के गुस्से का सामना करना पड़ता। एक बार उन्होंने एक नौकर की ड्यूटी लगा दी। उसे हिदायत दी गई कि कुंदन पर कड़ी नजर रखे और स्कूल से भागने ना दे। लेकिन कुंदन तो कुंदन थे, नौकर को चकमा देकर गायब हो जाते और स्कूल से छुट्टी होने से पहले प्रकट हो जाते। कुंदन की उम्र केवल 12 बरस की थी, लेकिन पूरे जम्मू में उसकी गायकी के चर्चे थे। और एक दिन तो कमाल हो गया। पिताजी के साथ एक दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा के दरबार में था। मीरा का भजन गाया और भजन पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार हॉल गूंज उठा। महाराजा ने कहा, इस लड़के के गले में सरस्वती बैठी है, ये बड़ा नाम कमाएगा।
इनकी जो फेम थी मशहूर, ये इसलिए जम्मू में हुए क्योंकि ये महाराजा प्रताप के दरबार में इन्होंने मीरा भजन गाई। तो वो छोटा बच्चा, शायद ये 12 या कुछ ऐसी उम्र के थे जब ये मीरा भजन ये गाए, तो इनका नाम काफी हो गया जम्मू में।
चारों ओर कुंदन ही कुंदन छाया हुआ था। एक दिन जम्मू की मशहूर रामलीला से निमंत्रण मिला। जाने माने हकीम परशुराम नागर घर आए, पिताजी से बोले,
कुंदन अच्छा गाता है, मैं इसे रामलीला में सीता की भूमिका के लिए चाहता हूं।
पिताजी पशुपेश में पूछा,
हकीम साहब, बच्चे की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा।
अरे अमरचंद जी, बच्चे का हुनर क्यों मारते हो? दरबार में आपने देखा, महाराज ने खुद पीठ थपथपाई थी।
और बेमन से पिताजी ने इजाजत दे दी। हम आपको बता दें कि राम की भूमिका खुद हकीम साहब करते थे। उन्होंने कुंदन को अभिनय और गायन शैली के अनेक गुर सिखाए। आप इस तरह उन्हें कुंदन का एक गुरु भी मान सकते हैं। और देखिए क्या कमाल था कि सीता बना कुंदन अपने संवादों और गायन से लोगों को रुला देता था। महिलाएं रामलीला शो के बाद रोते हुए सीता बने कुंदन के पास जाती और उनके पैर छूती। खुद कुंदन के पिता आगे की कतार में बैठे आंसू बहा रहे होते। ये था कुंदन के अभिनय और गायन का कमाल, और था 1914 का साल।
सहगल ने जम्मू की रामलीला में बहुत भाग लिया, सीता का रोल करते थे, और एक मास्टर परशुराम नागर थे जो उनके साथ राम का रोल करते थे, ओम प्रकाश जो बाद में हमारे करेक्टर एक्टर बने वो भी उस रामलीला में होते थे। तो कहते हैं कि एक बार अशोक वाटिका का कैसीनो ने इतना जीवंत किया कि लोगों ने कहा वंस मोर।
यहाँ पर दुनिया के महान गायक केएल सहगल जी रोल किया करते थे, सीता का रोल किया करते थे, सुना है हमने बुजुर्गों से, और उस धरोहर को हम संभाल कर रखे हुए हैं आज तक। ये ऐसी संस्था है जो कि 100 साल से भी पुरानी है।
इन्हीं दिनों एक हादसा हुआ, कुंदन के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई, रोते रोते रात हो गई। मां से बोले, मैं अब कभी नहीं गा पाऊंगा। मां घबरा गई, पीर बाबा सलमान यूसुफ के पास ले गई। उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि कुंदन एक बेजोड़ गायक बनेगा। बाबा ने धीरज बंधाया, मां से बोले,
कल से कुंदन को मेरे पास भेज दो, मैं खुद संगीत सिखाऊंगा।
ठीक है बाबा, कुछ भी करो, मेरे बच्चे की झोली संगीत से भर दो।
2 साल बाद पीर बाबा के आंगन में कुंदन की स्वर लहरी गूंज रही थी, बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्हीं दिनों पिताजी रिटायर हो गए, पुश्तैनी शहर जालंधर जा बसे। कुंदन आगे पढ़ाई के लिए जम्मू अपने चाचा के साथ ही रह गया। उसने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में दाखिला लिया। इन दिनों इसे गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज कहते हैं, लेकिन जो सबूत हैं उनके मुताबिक कुंदन कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और एक सुबह पढ़ाई और जम्मू को हमेशा के लिए छोड़कर जालंधर आ गए। ये 1926 का साल था। जालंधर के गली सहगला में आज भी वो मकान है जहां सहगल का परिवार रहता था। बचपन से आखिरी सांस तक सहगल का रिश्ता इस कमरे से बना रहा। कुंदनलाल सहगल के भतीजे सुरेश सहगल के लिए कुंदनलाल सहगल की निशानियां धरोहर से कम नहीं हैं।
कि वो यहीं इस रूम में बैठकर अपना जितना भी खाना पीना बजाना इसी कमरे में किया करते थे।
देश ही नहीं दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए जालंधर और कुंदनलाल सहगल का घर एक तीर्थ से कम नहीं है।
जालंधर में पिताजी ने ठेकेदारी शुरू कर दी थी, वो चाहते थे कुंदन उनकी मदद करे, और ठेकेदारी कुंदन के बस की नहीं थी, इसलिए कभी बिजली मैकेनिक बन जाते तो कभी किसी रेस्टोरेंट में काम करने लगते। अलबत्ता संगीत का शौक बदस्तूर जारी था, लेकिन एक दिन पिताजी ने आसमान सर पर उठा लिया, बोले, बहुत हो गया, या तो घर चुनो या संगीत, जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। दुखी कुंदन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन चुपचाप भागकर दिल्ली आ गए। देखिए इसके बाद की कहानी।
He was grown up, I think around 14-15 years old. तो दादाजी रिटायर हो गए थे तो हवेली में आ गए, तो उनसे कहा गया कि भाई तुम अब करो कुछ, क्या करोगे ज़िंदगी में, बड़े हो गए हो। तो बहुत जब घर से जोर पड़ा कि दोबारा पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो, गिरा ना वे।
पता था तो सिर्फ कुंदन को कि वो दिल्ली जा रहा है। स्टेशन पर जब वो रेल से उतरा तो कोई ठिकाना नहीं था कि कहां जाएगा। अजनबी शहर में कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन उसने तय किया था कि वो अपनी दम पर रोजी रोटी कमाएगा। दोस्तों की मदद से दिल्ली के बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिल गई। इस नौकरी में भला हुनर को कौन पूछता। लिहाजा चंद रोज बाद उकताए कुंदन ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में शिफ्ट अटेंडेंट की जॉब मिली। सहगल के बॉस थे बंगला फिल्मों के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पहाड़ी सान्याल के भाई। उन्होंने ही सहगल की मुलाकात पहाड़ी सान्याल से कराई थी, लेकिन ये कहानी हम आपको सुनाएंगे आगे। अभी तो हम आपको ये बता दें कि इस नौकरी को भी कुंदन ने कुछ दिन बाद ठोकर मार दी, क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। कुंदन ने वेतन में 5 रुपए महीने बढ़ाने की मांग की थी।
सैगल का अगर आप देखें तो वो एक उनका जो पूरा जीवन है वो संघर्ष में रहा, और उनकी जो तबीयत थी वो बिल्कुल पीर फकीर जैसी थी। उनको सिवाय संगीत के और कोई खबर ही नहीं थी दुनिया की।
सहगल सड़क पर थे, ऐसे में उनके बड़े भाई रामलाल सहगल काम आए। उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टाइम कीपर की नौकरी दिलाई। कुछ दिन बाद भाई का तबादला मुरादाबाद हो गया। वो कुंदन को साथ ले गए। कुंदन लाल सहगल अब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बतौर क्लर्क काम कर रहे थे। स्टेशन मास्टर अंग्रेज थे, संगीत के शौकीन। कुंदन के गायन ने उन्हें मोह लिया। मुरादाबाद के भद्रलोक में कुंदन की महफिलें सजने लगी। स्टेशन मास्टर की पत्नी भी कुंदन से संगीत सीखा करती थी, बदले में अंग्रेजी सिखाती थी। दिन अच्छे कट रहे थे।
वहां उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान का गाना सुना और उन्हें लगा कि ये गाने का जादू होता है, और फिर उन्होंने उनकी मशहूर एक बंदिश फिल्म देवदास में दिखाई।
कभी कभी कुंदन को लगता दिल्ली में उनके हुनर की कद्र ज्यादा हो सकती है, और एक दिन जा पहुंचे दिल्ली, रेलवे यार्ड में नौकरी करने लगे। इसी नौकरी के दौरान एक दिन गोरी हुकूमत में बड़े पद पर तैनात राय साहब राघवानंद गौतम ने वसंत पंचमी पर अपने घर गाने का न्योता भेजा। सहगल ने वो संगीत महफिल लूट ली। राय साहब शिमला के रहने वाले थे और वहां एक ड्रामा क्लब चलाते थे। उन्होंने कुंदन से कहा,
रेलवे की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? शिमला के ड्रामा क्लब में गाने का भरपूर अवसर होगा और जरूरत के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे।
अंधा क्या चाहे दो आंखें। कुंदन जा पहुंचे शिमला। वहां के अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब में कुंदन की नई नौकरी शुरू हो गई। क्लब के सारे शो गेटी थिएटर में हुआ करते थे। राय साहब ने एक कमरा कुंदन को दिला दिया और ढाबे में खाने का इंतजाम कर दिया। हम आपको बता दें कि उन दिनों गेटी थिएटर में एक शाम का टिकट होता था 150 रुपए। जी, आजादी से 17 साल पहले एक नाटक का टिकट 150 रुपए, और वो भी एक शो का। ये 1930 का साल था।
वहाँ सैगल अपना पार्ट भूल जाते थे क्योंकि फीमेल रोल करते थे, तो उन्होंने कहा कि सैगल कल तुम्हारा प्ले है और तुम्हें डायलॉग याद नहीं। उसने कहा अगर डायलॉग ही याद हो जाते तो मुझे पहाड़े याद हो जाते तो तुम्हारी गाँव नहीं रहा होता।
कुंदन की लोकप्रियता परवान चढ़ रही थी। इन्हीं दिनों एक नाटक में कुंदन ने एक हिजड़े की भूमिका निभाई और गाना गाया, सैया हाय ये बताशे की जोड़ी। इस नाटक ने कुंदन को शिमला का हीरो बना दिया।
उनका एक बड़ा अच्छा गाना बड़ा मशहूर हुआ था जो उन्होंने गेटी थिएटर में एक एक्टिंग करते हुए गाया था, वो था सैया मोहे मंगा दे बताशे दी जोड़ी, ये गाना इतना मशहूर हुआ था कि गोर बाजार में हर कोई उन दिनों यही गाना गाता गाया करता था।
इन्हीं दिनों सहगल की लोकप्रियता को देखते हुए क्लब ने एक नया नाटक पत्नी प्रताप सती अनुसुईया के मंचन का फैसला किया। कुंदन इसमें अनुसुईया की भूमिका में थी। राय साहब राघवानंद गौतम इससे बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने कुंदन से पूछा,
शिमला में कोई तकलीफ तो नहीं?
नहीं, आपके होते क्या परेशानी, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। लेकिन
क्या? लेकिन कोई उलझन?
नहीं, उलझन तो नहीं, एक एक दरखास्त है आपसे।
बोलो कुंदन।
असल में थिएटर होता है शाम को और सारे दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता। अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो समय कट जाएगा।
बात तो तुम्हारी सही है, मैं कुछ करता हूं।
राय साहब ने ड्रामा क्लब के एक और संरक्षक आनंदी प्रसाद से बात की। आनंदी प्रसाद रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में मैनेजर थे। इस तरह कुंदनलाल सहगल की नौकरी टाइपराइटर कंपनी में शुरू हो गई। इतने पैसे होते थे कि सिगरेट की लत लग गई। 6-7 महीने ही बीते थे कि कंपनी ने दिल्ली तबादला कर दिया। कंपनी के आदेश पर राय साहब भी कुछ ना कर पाए। ड्रामा क्लब को तगड़ा झटका लगा था। शिमला अब कुंदनलाल सहगल का अतीत बन चुका था। सहगल अब घूम घूम कर गाते हुए टाइपराइटर बेच रहे थे।
वो हमारे पैट्रन थे क्लब के और वो थे मैनेजर रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी। तो उनसे कहा कि साहब, कैकर साहब, इसको कहीं कुछ लगा लो अपने उसमें वर्कशॉप में, उसने कोई बात नहीं, भेज दो। उन्होंने भेज दिया, वहाँ लिस्ट में उनका एनरोलमेंट हो गया। एक सीज़न के बाद फिर वो क्या नाम दिल्ली आए, मैं भी दिल्ली आया। तो यहाँ कश्मीरी गेट पर दफ्तर था उनका, उस दफ्तर में मैं भी और वो भी साथ साथ थे। गौतम साहब ने कहा कि कैकर साहब, ज़रा आप तो कुछ तरक्की कर दो इसकी, कुछ बन जाए इसकी ज़िंदगी। उन्होंने उसको सेल साइड में ले लिया। फिर उस तीसरे सीज़न में वो वहाँ से शिमले से चुपचाप चले गए और पता नहीं किसी को इतला नहीं दी कि मैं कहाँ जा रहा।
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में कंपनी का दफ्तर था। अक्सर वहां से गुजरने वालों को दफ्तर से गाने सुनाई देते। कभी कभी तो सड़क पर भीड़ जमा हो जाती और लोग मंत्रमुग्ध होकर कुंदन को सुनते। कुछ दिन के बाद कुंदन को दूसरे शहरों में जाकर टाइपराइटर बेचने का काम मिल गया। कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ। कुंदन दफ्तरों में जाते, अपनी आवाज का जादू बिखेरते और लौटते तो ढेर सारे ऑर्डर जेब में होते। टाइपराइटर की बिक्री कई गुना बढ़ गई थी। दूसरे सेल्समैन कुंदन से जलने लगे। वो एक साजिश के शिकार हो गए। शिकायत हुई कि कुंदन ने टाइपराइटर बेचने से मिले पैसे कंपनी को जमा नहीं कराए। जांच के बाद सारे आरोप झूठे निकले, लेकिन कुंदन का दिल टूट गया। उन्होंने तय किया कि वो अब कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे। एक दिन सुबह कंपनी का दफ्तर तो खुला, लेकिन उसमें कुंदन लाल सहगल नहीं थे। वो दूर, बहुत दूर जा चुके थे। कंपनी ने कुंदन को खो दिया था।
सहगल पैसों की गड़बड़ी के आरोप से आहत थे। जिंदगी में इंसान पर ऐसा दौर भी कभी कभी आता है। दुनिया आरोपों के कटघरे में खड़ा करती है। इससे इंसान या तो टूट जाता है, बिखर जाता है, या अपनी बेकसूरी हिमालय की चोटी पर चढ़कर साबित करता है। सहगल ऐसा ही कुछ करना चाहते थे। नौकरी से दिल भर गया था, सोचा अब वही करेंगे जो अच्छा लगता है। फिर क्या था, उठाया झोला और जा पहुंचे नई दिल्ली स्टेशन। सामने लखनऊ जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। थर्ड क्लास का टिकट खरीदा और जा बैठे। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जब कुंदनलाल सहगल शिफ्ट अटेंडेंट थे तो उनके अफसर ने मुलाकात कराई थी पहाड़ी सान्याल से। पहाड़ी सान्याल बांग्ला फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता थे और उन दिनों लखनऊ में एक नवाब के यहाँ दीवान थे। हो सकता है लखनऊ का टिकट लेने के पीछे पहाड़ी सान्याल से मदद लेने की इच्छा रही हो, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता। अब देखिए इसके आगे की कहानी।
दिल कितना ना दुख है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना।
अंधेरे को चीरती ट्रेन रात में पूरी रफ्तार से भाग रही थी, साथ ही भाग रहे थे सहगल की खुली आंखों से सपने। कभी बहुत निराशा, अकेलापन और भविष्य का अंधेरा घना हो जाता तो कभी माँ की याद आती, उनके भजन संगीत का झरना बनकर फूटते, दिल उजाले से भर जाता। सहगल खुद से ही बात करने लगते, बड़बड़ाते, संगीत ही मेरा साथी है, इसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। ख्यालों में डूबे कब कानपुर आ गया पता ही नहीं चला। न जाने क्या सूझा कि झोला उठाया और उतर गए नीचे। नियति शायद उनकी और परीक्षा लेना चाहती थी और लखनऊ नहीं ले जाना चाहती थी। सहगल को याद आया जब कानपुर में टाइपराइटर बेचने आते थे तो कुछ दफ्तरों के आला अफसर उनको बड़ी इज्जत देते थे और उनका गायन भी पसंद करते थे, शायद वो कुछ मदद करें। लेकिन जब उनके पास गए तो बड़ा झटका लगा, सभी ने हाथ खड़े कर दिए और किसी किसी ने तो पहचाना भी नहीं। टूटे हुए सहगल बिखरने लगे, जेब के पैसों ने चेतावनी दे दी। कुछ दिन गुजरे, पेट भरने के लिए पैसे भी ना बचे। ऐसा बताते हैं कि कई दिन उन्हें भूखों रहना पड़ा। एक दिन किसी चमड़ा फैक्ट्री के दरवाजे भूख से बेहाल कुंदनलाल सहगल बेहोश होकर गिर पड़े। मजदूरों ने देखा तो उठाकर अपनी बस्ती में ले गए, दो चार दिन रखा। सहगल की तबीयत सुधर गई तो जाने दिया। आज के जमाने में क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। संघर्ष चलता रहा, कभी कभी जी उचटता तो गंगा किनारे सरसैया घाट पर मंदिर के सामने बैठकर भजन गाने लगते, बड़ा चैन मिलता। एक दिन भजन गाते गाते इतने डूब गए कि आंसू बहने लगे, सुध बुध खो बैठे। लोगों ने समझा भिखारी है, कुछ भजन सुनते और कुछ पैसे फेंक कर आगे बढ़ जाते। सहगल को होश आया तो देखा चारों तरफ पैसे बिखरे पड़े हैं। अपने पर शर्म आने लगी, देखा तो एक सज्जन घूर कर देख रहे थे। परिचय हुआ तो उन्होंने सहगल को जॉब ऑफर कर दी। वो एक साड़ी विक्रेता थे, बोले गागा कर साड़ियां बेचो मियां, जितनी साड़ी उतना कमीशन। मरता क्या ना करता, अगले दिन से सहगल साड़ी वाला बन गए। पहले ही दिन 8 साड़ियां बेची। कानपुर की तंग गलियों में साड़ियों का ब्यौरा गाते हुए देते और पीछे पीछे उस साड़ी विक्रेता का नौकर साड़ियों का गट्ठर लादे घूमा करता। धंधा चल निकला।
एक आदमी ने जब भी उनके पास गए तो उसने कहा टाइपराइटर ही फेंक दिया। उसने कहा ये क्या मशीन तुम ले हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मैं साड़ियों का धंधा करता हूँ, तुम मेरी साड़ियाँ के लिए आवाज़ लगाओ तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। तो उसने कहा कि मैं साड़ियों का गट्ठर थोड़ी उठाऊंगा। उसने गट्ठर हमारा आदमी उठाएगा, तुम अपनी आवाज़ में कहना कि साड़ी ले लो।
कुछ दिन ही बीते थे कि गले में फिर खुजली होने लगी। होता ये कि दिन भर साड़ियां बेचते और शाम को कानपुर के संगीत उस्तादों की संगत में चले जाते। उन दिनों वहां उस्ताद रशीद अहमद खां और उनके भाइयों गुलाम साबिर खां, गुलाम जाफर खां और गुलाम बाकर खां की धूम थी। सहगल ने उनसे कुछ राग रागिनियां सीखी। इन उस्तादों ने कुंदन की गायकी को भी पसंद किया। कानपुर में उन दिनों मुजरे भी होते थे। कुछ तवायफें अपने ठुमरी, दादरा और लोक गीतों के लिए मशहूर थीं। ऐसी ही एक तवायफ को सहगल गुरु मां मानने लगे। उनसे ठुमरी दादरा सीखा। कानपुर में भी कुंदन की गायकी के चर्चे हो रहे थे। नियति कुंदन को सुर सम्राट बनाने से पहले अपने ढंग से ट्रेनिंग दे रही थी। एक दिन तो कमाल हो गया। शाम की संगीत महफिल में उन्हें पंडित हरिश्चंद्र बाली मिले। वो जालंधर से आए थे और सहगल परिवार के पड़ोसी थे। जब कुंदन जम्मू छोड़कर जालंधर आए थे तो वहां के संगीत संसार से परिचय बाली जी ने ही कराया था। दोनों के बीच कुछ इस तरह संवाद हुआ।
अरे कुंदन, तुम यहां कैसे हो भाई? यहां कैसे पहुंचे? सेहत कैसी है? क्या कर रहे हो?
जी, 4-5 महीने से कानपुर में ही हूं।
तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम सब कितने परेशान रहे हैं तुम्हें शायद नहीं पता।
मगर मैं तो बराबर माँ को चिट्ठियां भेज रहा हूं।
मजाक बंद करो कुंदन, तुम्हें नहीं पता कि माँ की हालत क्या है। कानपुर में हो और चिट्ठी कभी इलाहाबाद से, कभी लखनऊ से, तो कभी मुरादाबाद से भेजते हो और किसी में अपना पता भी नहीं लिखते।
मैं क्या लिखता, पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, उन्होंने तो मुझे निकाल ही दिया था।
खैर छोड़ो, अब क्या इरादा है, घर चलोगे?
नहीं, कानपुर की संगीत महफिलों से मैं ऊब चुका हूं, कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं।
ठीक है, तुम कलकत्ता क्यों नहीं जाते? वहां न्यू थिएटर वाले अब बोलती फिल्में बनाना शुरू कर रहे हैं, उनमें एक्टिंग और गाना दोनों करना पड़ता है। तुमने रामलीला में एक्टिंग भी तो की है।
लेकिन वहां मुझे कौन जानता है।
अच्छा सुनो, अगले महीने में कलकत्ता जाऊंगा। न्यू थिएटर के संगीत निर्देशक रायचंद्र बुराल मेरे मित्र हैं, मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा।
वाह, इससे अच्छा क्या होगा, मैं कलकत्ता पहुंचकर आपका इंतजार करूंगा।
चल सागर, तो वो लेके गए थे तो यहाँ कलकत्ता में उनके खिलाया था, लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना गवाया इनसे, सागर से।
बाली जी ने कुंदन के सपनों को पंख लगा दिए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कानपुर छोड़ने से पहले साड़ी वाले सेठ जी को बताना जरूरी है। आखिर इस शहर में सेठ जी उनके लिए तो ईश्वर से कम नहीं थे। वो फौरन सेठ जी के पास पहुंचे और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ जी खुश हुए, बोले,
बेटे कलकत्ता जरूर जाओ, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलेगी। मेरे लायक कुछ हो तो बताना।
जी जरूर।
लेकिन इतने बड़े शहर में कोई ठिकाना है? कहां जाओगे, कहां रुकोगे, खर्च कैसे चलेगा, काम मिलने में तो देर लगेगी।
वो तो है, वहां कोई मेरा है नहीं।
बेटे हमारी एक गद्दी कलकत्ता में है, मैं अपने मैनेजर को चिट्ठी लिख देता हूं, जब तक काम ना मिले तब तक तुम वहां रह सकते हो, खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी।
सहगल असमंजस में, क्या करूं, इतना बड़ा एहसान, एक पिताजी थे जो मेरा खर्च नहीं उठाना चाहते थे, और एक ये सेठ। सेठ जी, कुंदन का उहापोह ताड़ गए, स्वाभिमानी कुंदन की हिचक क्या है समझ गए।
अच्छा सुनो, तुम कलकत्ता में भी फेरी लगाकर साड़ियां बेच सकते हो, जब मर्जी का काम मिल जाए तो छोड़ देना।
सहगल फूट फूट कर रो पड़े। वो सोच रहे थे भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो मेरे सामने बैठा है वो क्या भगवान का रूप नहीं है। उन्होंने सेठ जी के पैर छू लिए, सेठ जी ने उन्हें गले लगा लिया। अगले ही दिन कुंदन कानपुर से कलकत्ता के लिए रेल में सवार हो गया, महानगर कलकत्ता की ओर। कलकत्ता की तंग गलियों में सहगल के सुर साड़ी बेच रहे थे, दिन भर ठीक ठाक पैसे कमा लेते। अभी हरिश्चंद्र बाली जालंधर से नहीं आए थे, फिर भी साड़ी बेचने के काम से फुर्सत मिलती तो शाम को न्यू थिएटर और रेडियो स्टेशन की परिक्रमा करने लग जाते। न्यू थिएटर में तो नहीं, रेडियो में जरूर सहगल को मौका मिल गया, लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। न्यू थिएटर के द्वार सहगल के लिए बंद थे। ये 1930 का साल था। सहगल अभी भी फेरी लगाकर साड़ी बेचने का काम कर रहे थे। एक दिन एक गरीब बस्ती में नजमा नाम की लड़की मिली। उसने एक हरे रंग की साड़ी पसंद की, लेकिन दाम पूछे तो घबरा गई। साड़ी 10 रुपए की थी। सहगल ने कहा,
तुम ये साड़ी ले लो, पैसों की चिंता मत करो।
नहीं, मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकती।
कोई बात नहीं, मैं पैसे बाद में ले लूंगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता, मेरे माँ बाप नहीं है, एक भाई है, मजदूरी करता है, किसी तरह गुजारा हो जाता है। अगर अगले शुक्रवार तक आप ये साड़ी ना बेचें, तो भाई अगले हफ्ते की मजदूरी से ये साड़ी खरीद लेगा।
ठीक है नजमा, अगले हफ्ते तक ये साड़ी नहीं बेचूंगा, उसके बाद ये साड़ी तुम्हारी।
अगला शुक्रवार आया। सहगल साड़ी लेकर नजमा के दरवाजे पहुंचे, लेकिन ये क्या, अंदर से किसी के धाड़े मारकर रोने की आवाज आ रही थी। देखा, नजमा का भाई था। उसने बताया कि रात को नजमा के सीने में तेज दर्द उठा, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई आराम न मिला। सुबह सुबह नजमा ने दम तोड़ दिया। दवाई और डॉक्टर की फीस में सारे पैसे खर्च हो गए। अब कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। सहगल ने दिलासा दी, कहा,
भाई तुम कफन की चिंता न करो।
सहगल ने वो हरी साड़ी नजमा पर ओढ़ा दी, बोले,
बहन मैं तेरा गुनहगार हूं, जीते जी तेरी इच्छा पूरी ना कर सका। तू खुदा से कहना तेरे इस अभागे भाई को माफ कर दे।
और फूट फूट कर रो पड़े सहगल। अगले दिन से साड़ी बेचना बंद। सहगल की आत्मा कचोट रही थी। सहगल साड़ी वाला मर चुका था।
जिस रात नजमा का इंतकाल हुआ, वो कुंदन पर बहुत भारी पड़ी। रह रहकर नजमा का हसरत भरा चेहरा याद आता। सिर्फ 10 रुपए की साड़ी उसे भेंट न कर पाया। कई बार रोना आया। सुबह हुई तो साड़ी बेचने का सारा हिसाब दफ्तर में जमा कर दिया और साड़ी बेचने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। और देखिए क्या संयोग था, नियति ने जैसे पटकथा पहले ही लिख रखी थी, जिसके लिए कलकत्ता आए थे वो वरदान की शक्ल में सहगल की झोली में आ गिरा। न्यू थिएटर से उनका रिश्ता बन गया। कैसे, देखिए ये दिलचस्प दास्तान।
न्यू थिएटर से जोड़ने वाली अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन शोध के मुताबिक सबसे ठीक ठाक और भरोसा करने वाली कहानी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हुआ ये कि जब सहगल ने साड़ी बेचना बंद किया और उधर जालंधर से हरिश्चंद्र बाली की चिट्ठी मिली, उन्होंने लिखा था कि वो कलकत्ता आ रहे हैं और न्यू थिएटर्स के संगीत निर्देशक रायचंद्र बोराल के घर ठहरेंगे, कुंदन चाहें तो आकर मिल सकते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। सुबह सुबह जा पहुंचे बोराल के घर। बाली जी ने बोराल से मिलाया, लेकिन बोराल बड़े सख्त थे। बोले,
ना तो इसने शास्त्रीय संगीत सीखा है और ना बांग्ला जानता है। सिर्फ गजलें और भजन गाने वाले को मैं कैसे मौका दे सकता हूं।
बारी कुंदनलाल की थी। उन्होंने कहा,
आप अवसर तो दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं असंभव को संभव कर दिखाऊंगा।
बालीजी ने भी कुंदन का समर्थन किया। बोले,
एक बार न्यू थिएटर के मुखिया बीएन सरकार से मिला दीजिए, ये लड़का आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा।
ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं, मगर वादा नहीं करता।
इस तरह आरसी बोराल कुंदनलाल सहगल को ले गए बीएन सरकार के पास। सरकार ने देखा तो बोले,
अरे इस लड़के से तो मैं कई बार मिल चुका हूं, इसे तो बांग्ला भाषा ही नहीं आती, कैसे काम करेगा न्यू थिएटर में।
एक बार इसका काम तो देख लीजिए सरकार साहब, आपको निराशा नहीं होगी।
आरसी बोराल ने कहा,
चलो तुम कहते हो तो देखते हैं, शर्त यह है कि इन्हें तुरंत बांग्ला सीखनी पड़ेगी। अच्छा, पहले कहीं काम किया है?
जी, टाइपराइटर कंपनी में काम करता था।
कितना पैसा मिलता था?
जी, 150 रुपए और भत्ता।
ठीक है, हम आपको 200 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, 200 रुपए हर महीने और 5 रुपए रोज भत्ता मिलेगा।
और बीएन सरकार ने कुंदनलाल सहगल का एग्रीमेंट तैयार करने का आदेश दिया। सहगल आसमान में उड़ रहे थे। 200 रुपए और अपनी पसंद का काम, दुनिया में कितने लोगों को यह मौका मिलता है। उस रात सहगल सो ना पाए, रात भर पगार के 200 रुपए और 150 रुपए का भत्ता सपनों में नाचता रहा। ये 1931 का साल था।
वो आरसी बोराल के पास ले गए, बीआर सरकार थे, इनके पास ले गए और उन्होंने फिर थोड़ा सी इसकी इनकी आवाज़ टेस्ट की, तो उनको बताले थे वो सुर ताल वगैरह उनको बिल्कुल नहीं पता था इतनी ज़्यादा, तो इन्होंने उसको ये कि आप अगर बाली साहब आप अगर इनको सिखाना पसंद करेंगे, थोड़ा बहुत इसको ठीक करेंगे, तो मैं इसको ले लूँगा।
ये वो दौर था जब गूंगी फिल्मों की विदाई हो रही थी और बोलती फिल्में पर्दे पर आने की तैयारी कर रही थी। न्यू थिएटर ने कुंदनलाल सहगल को लेकर हिंदुस्तानी जबान में फिल्म मोहब्बत के आंसू बनाने का फैसला किया। 16 जनवरी 1932 को फिल्म का पहला शो इलाहाबाद के विश्वंभर सिनेमा में हुआ। फिल्म पिट गई, सहगल दुखी थे। इसके बाद अगली फिल्म भी इसी साल आई, जिंदा लाश। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। न्यू थिएटर ने सहगल के साथ इसी साल एक और फिल्म बनाई। तीसरी फिल्म थी सुबह का सितारा। अफसोस, ये फिल्म भी नहीं चली। सहगल फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक बना चुके थे। वो अंदर ही अंदर टूटने लगे। लेकिन
देखिए क्या गजब का भरोसा था बीएन सरकार का अपने आप पर। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सहगल को लेकर चौथी फिल्म पूरन भगत बनाई। इस बार किस्मत मेहरबान थी, सहगल की जैसे लॉटरी लग गई। हालांकि वो फिल्म के हीरो नहीं थे, सिर्फ साधु के वेश में चार भजन गाए थे। 14,137 फीट लंबी इस फिल्म ने बेशुमार लोकप्रियता बटोरी। ये 1933 का साल था।
पहली तीन फिल्मों में जो उनका क्रेडिट लाइन है वो सैगल कश्मीरी के नाम से।
ओ, पूरा नाम नहीं दिया उन्होंने। और घर के लोगों को जाहिर फिर तो बताया भी नहीं।
तो स्वीट वो तो फिर एक जो उनके साथ रेमिंगटन में काम करते थे उन्होंने कहा कि मैंने एक पोस्टर देखा, किसी ने कहा साहब एक सैगल आया कोई बहुत मशहूर एक्टर है, तो कहने लगे हमने जब पोस्टर देखा तो उस पोस्टर पर सैगल की तस्वीर थी लेकिन नाम नहीं था, सैगल कश्मीरी लिखा हुआ था। और सैगल की जो ख्याति होती है वो होती है फिल्म पूरन भगत से। उसमें उनके जो भजन गाए हुए थे उन्होंने तहलका मचा दी पूरे देश में, हर घर में वो भजन बज रहे थे। और ये भी दिलचस्प बात है कि उस फिल्म को देख के केदार शर्मा ने फैसला किया कि उन्हें सिर्फ फिल्म ही बनानी।
उनकी मदर जो थी बचपन में इनको ले जाती थी जहाँ भजन होते थे और वो खुद भी गाती थी। इनकी मदर केसर बाई जो थी वो जब जब कहीं भजन संध्या होती या भजन मंडली होती तो इनको साथ ले जाती और ये भजन वहाँ पे खुद भी गाती थी और इनसे भी गवाती थी। शुरुआत इन्होंने भजन से ही की और इनका शुरू का पहला एल्बम जो आया वो भजन का ही आया है।
बीएन सरकार सहगल से खुश थे, उन्हें लगा कि सहगल और भजन का रिश्ता पर्दे पर कामयाबी का फॉर्मूला बन सकता है। ताबड़तोड़ उन्होंने एक और फिल्म राजरानी मीरा बना डाली। इसी साल यानी 1933 में एक और फिल्म आई दुलारी बीवी। इस फिल्म का भी कोई रिकॉर्ड या वीडियो आज नहीं मिलता। इसमें वो एक हास्य अभिनेता के तौर पर नजर आए थे। तो हम बता रहे थे कि सहगल अब बीएन सरकार के चहेते थे। वो सहगल को धार्मिक छवि से निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई यहूदी की लड़की। इस फिल्म में लोगों ने सहगल को प्रिंस मार्कस के रूप में देखा। दरअसल ये फिल्म जर्मन तानाशाह हिटलर के यहूदियों पर अत्याचारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पारसी थिएटर के जाने माने नाटककार आगा हश्र कश्मीरी के नाटक पर यह फिल्म बनाई गई थी। सहगल की नायिका थी रतन भाई। फिल्म के 19 में से 5 गाने सहगल ने और 2 रतन भाई ने गाए थे, बाकी का ब्यौरा नहीं मिलता। 19 जनवरी 1934 को यह फिल्म कलकत्ता के न्यू सिनेमा में रिलीज हुई थी। फिल्म से मिर्जा गालिब की एक गजल का टुकड़ा आपके लिए पेश है।
सुनाए ना बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने।
उन्होंने गालिब की जो खुद कंपोज की हुई थी गजलें वो गाए। उन्होंने गाया लाई है याद आए कजा ले चली चले, ये उनकी मुझे सबसे बड़ी फेवरेट गज़ल उनकी है। बाकी गालिब को 20th सेंचुरी में पॉपुलर करने वाला कुंदनलाल सहगल था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था कि गालिब को जो 20th सेंचुरी में इतना पॉपुलर हुआ है सिर्फ शहनशाह मौसीकी कुंदनलाल सहगल ने जो उसकी गजलें गाई हैं 1930s में।
इसी बीच
न्यू थिएटर की एक फिल्म चंडीदास ने बहुत लोकप्रियता बटोरी थी। ये बंगाल की पहली बोलती फिल्म थी।
रात कटे किन किन के तारे ढूंढत नैना साझा सकारे।
सहगल ने इसमें चंडीदास की भूमिका निभाई थी। नायिका थी गायिका अभिनेत्री उमा शशि। 3 महीने में ही फिल्म पूरी हो गई। जैसे ही फिल्म का प्रदर्शन हुआ, सहगल लोकप्रियता की चोटी पर जा बैठे। ये 1934 का साल था।
चंडीदास के आखिर में एक सीन है जिसके अंदर एक ब्याह दिखाते हैं, जो हीरो है वो हीरोइन से ब्याह कर लेता है। मेरी नानी उस फिल्म में बैठी थी, नाना उनके साथ बैठे थे, लेकिन उनको बार बार थिएटर से बाहर जाना पड़ रहा था, बिकॉज फैंस आते थे या कुछ काम होता था, तो ये देख रही थी कि ये आते हैं चले जाते हैं, तो उनको लगा कि ये पीछे जाके और एक्टिंग कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको फिल्मों का आइडिया नहीं था। जब शादी का सीन आया तो उन्होंने शोर मचा दिया उधर कि ये तो मेरे पति हैं, आप शादी कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो नानी को लेके न्यू थिएटर्स ले गए, स्टूडियोज दिखाए और उनको बताया कि भैया फिल्में इस तरह से बनती हैं।
ही इज़ द फाउंडर ऑफ फिल्म म्यूज़िक। फिल्म म्यूज़िक उनके साथ ही शुरू होता है, उससे पहले फिल्म म्यूज़िक था ही नहीं, और उसके बाद बस फिल्म म्यूज़िक समझिए। और मुझे अभी तक याद है 1934 में जब चंडीदास आई, उसमें गाना था प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार, इट बिकेम ए हाउसहोल्ड सॉन्ग, इतना पॉपुलर हुआ।
प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का सार, प्रेम में सुख का सार, प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का सार, प्रेम में सुख का सार।
चंडीदास की कामयाबी ने सहगल के सपनों को पंख लगा दिए। एक के बाद एक उनकी फिल्में आने लगीं। 1934 में आई रूपलेखा उर्फ मोहब्बत की कसौटी। इस फिल्म में सहगल सम्राट अशोक की भूमिका में थे। अगले साल 3 फिल्में आईं, डाकू मंसूर, इस फिल्म पर गोरी हुकूमत ने बंदिश लगा दी। इसके अलावा कारवाने हयात और देवदास, भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर। जाने माने बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अपनी नाकाम मोहब्बत का अफसाना। ये फिल्म पहले बांग्ला भाषा में बन चुकी थी। आपको याद होगा कि न्यू थिएटर्स के सर्वे सर्वा बीएन सरकार ने बांग्ला नहीं जानने के कारण सहगल को नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब बांग्ला में देवदास बनी तो फिल्म के 2 बांग्ला गीत सहगल को ही गाने का मौका मिला। और जब देवदास का हिंदी संस्करण बना तो सहगल फिल्म के हीरो थे और उन्होंने सारे गाने गाए।
पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, जिनके दो नैनन में बालम आज बसो मोरे मन में, बालम आज बसो मोरे मन में।
फिल्म के निर्देशक थे प्रमथेश चंद्र बरुआ। हाँ, संगीत निर्देशक आरसी बोराल नहीं बल्कि तिमिर बरन थे। वही तिमिर बरन जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वंदे मातरम की धुन तैयार की थी। गीत लिखे थे केदार शर्मा ने। जब इस फिल्म का गीत दुख के दिन बीतत नाही पर्दे पर आता था तो सिनेमा हॉल में मौजूद लोग फूट फूट कर रोते थे।
साइकिल के दोनों गाने बालम आए बसो मेरे मन में और दुख के अपन बीतत नहीं, ये दोनों जो हैं वो साइकिल की अपनी कंपोजिशन है। और वो आदमी बहुत बहुत बढ़िया था, उनके घर में म्यूज़िक का बहुत वो था। ये उन्होंने बैठे बैठे वहाँ मराए थे, क्योंकि जब पिक्चर सुपर हिट हो गई और ख़बर आई कि दोपहर को एक गाना इसमें डालना है, तो मुझे बुलाया गया कि अभी लिखो। तो मैंने कहा सैगल साहब को लाइए, मैं लिखता हूँ, ये तर्ज बनाएंगे। तो उसी वक्त बैठ के ये बना था। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों ओर अंधेरा, अब कुछ सूझत नहीं
दुख के, अब दिन बीतत नहीं सुख के, दिन थे एक सपन था, सुख के दिन थे एक सपन था, सुख के दिन थे एक सपन था, अब दिन बीतत नहीं मोरे।
कहा जाता है कि फिल्म का जब पहला शो हुआ तो खुद बरुआ इसे देखने गए, साथ में एक रिवॉल्वर भी ले गए, ये सोचकर कि दर्शकों को अगर फिल्म पसंद ना आई तो वो खुद को गोली मार लेंगे। देखिए इस नायाब कोहिनूर के कुछ दृश्य।
ओ, तो तुम आ गई।
हाँ, मैं आ गई।
तुम कहाँ जा रही थी?
मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी।
तो फिर यहाँ क्यों आ गई?
मुझे मेरे देवता ने बुलाया, इसलिए मैं आ गई।
पर
क्या?
मेरे वालदेन इसके खिलाफ हैं। सुना, तुम जानती हो?
मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं।
देवदास, क्या हुआ भैया?
कुछ नहीं।
हिंदुस्तान को फिल्मों का पहला महानायक मिल गया था, ये 1935 का साल था।
देवदास के बाद के.एल. सहगल हिंदुस्तानी फिल्मों के महानायक बन बैठे। पर्दे पर कुंदनलाल सहगल की बेजोड़ पारी की दास्तान देखिए विरासत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, जिनके दो नैनन में बालम आज बसो।